हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। झलक की ये बात सुनकर अनामिका कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसके चेहरे पर हैरानी और सोच का मिला जुला भाव साफ दिखाई दे रहा था। मुझे अभी थोड़ी देर और बातें करना चाहती थी, लेकिन झलक ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, उसने अपनी बातों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया था। फिलहाल वे लोग जल्दी ही मल्होत्रा मेंशन जा पहुंचे थे और झलक सीधा अपने कमरे में चली गई थी। उसे अपने कमरे में जाते देख सौरभ जी थोड़ा हैरान हुए और दादाजी की ओर देखकर बोले थे, क्या बात है अंकल जी, कुछ हुआ है क्या? झलक इतनी ज्यादा गुस्से में अंदर क्यों गई है? आखिर मामला क्या है? तभी दादाजी ने ईमानदारी से सारी बातें उन्हें बता दी और कहा था, हमसे जल्दबाजी हो गई, हमें झलक को थोड़ा वक्त और देना चाहिए था। इस तरह जल्दबाजी करके हमने बिल्कुल ठीक नहीं किया, इसमें सारी गलती हमारी ही है। ये सुनकर सौरभ जी गहरी चिंता में डूब गए और बोले थे, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए अंकल जी, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। अगर उसे किसी बात की ठेस लगी है, अगर उसे दुख पहुंचा है, तो जब तक उसका वो दुख कम नहीं होगा, जब तक उसके दिल का बोझ हल्का नहीं होगा, तब तक वो अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उसे किस तरह से जिंदगी की ओर वापस लाना है। आखिरकार इन हाथों ने ही उसे पूरे 20 साल पाला है। अभी आप उसे जाने की इजाज़त मत दीजिए, कम से कम अभी नहीं। अगर इस वक्त आपने उसे जाने दिया तो ना जाने वो गुस्से में क्या कदम उठा ले। जैसे ही सौरभ जी ने ये बातें कहीं, दिव्यजय जी कुछ पल के लिए शांत हो गए थे। सौरभ जी की बातें उन्हें ठीक लगीं। आखिरकार झलक को वे इतने सालों से जानते, पहचानते और पालते आए थे, तो उसके स्वभाव के बारे में उनसे बेहतर भला कौन जान सकता था। ये सोचकर दिव्यजय जी भी चुप रहे और सौरभ जी के कंधे पर हाथ रखकर अपने कमरे में चले गए। उधर सौरभ जी गहरी नज़रों से एक बार फिर चारों ओर देखने लगे थे। फिलहाल झलक सीधा अपने कमरे में गई। वहां जाकर उसने अपने आप को पूरी तरह शांत करने के लिए बाथरूम का शावर ऑन कर दिया और कपड़ों समेत ही पानी के नीचे खड़ी हो गई। कुछ देर तक वो अपने सिर पर शावर का पानी गिरने देती रही। आज जो कुछ भी हुआ था, जितना भी तनाव भरा दिन था, सारी बातें उसके तेज दिमाग में घूमने लगी थीं। वो खुद से बुदबुदाई थी, आखिर क्या हर औरत को किसी मर्द के सहारे की जरूरत होती है, और खासकर मुझे जैसी औरत को? बिल्कुल भी नहीं। मैं इस मर्द प्रधान समाज को साबित करके दिखाऊंगी कि कोई भी औरत बिना मर्द के भी सर्वाइव कर सकती है, अपनी जिंदगी जी सकती है। ये सोचते हुए झलक पूरी तरह से इरिगेट हो रही थी। फिलहाल वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ खुराना इस वक्त अपने कमरे में मौजूद था। रणविजय की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं और साथ ही दादी की कही हुई बातों के बारे में भी वो सोच रहा था। वो खुद से सवाल कर रहा था, दादी शायद ठीक कह रही हैं, वैसे झलक पर नाजायज का ठप्पा पड़ चुका था, उसके बाद ही तो मैंने उसे खुद से दूर किया था, लेकिन फिर उसके आने या ना आने से मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैं उसके बारे में पता लगाना क्यों चाहता हूँ? वो मन ही मन आगे सोचने लगा था। हो सकता है ये सब पब्लिसिटी स्टंट हो। जिस तरह वो उस पावरफुल ऑरा के साथ वहां आई थी, शायद उसका कोई मकसद रहा हो, या फिर कोई डील, किसी तरह की राजनीति हो सकती है इसमें। राजनीति में इस तरह के स्टंट किए जाते हैं, किसी को नीचे दिखाने के लिए, किसी की पार्टी की छवि गिराने के लिए। इन्हीं उलझनों में उसने तुरंत फोन करके रोनित को इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि झलक के बारे में किसी भी तरह की कोई तहकीकात ना की जाए, उसके होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने सख्त लहजे में कहा था। हालांकि ये बातें वो अपनी जुबान से कह रहा था, लेकिन उसका दिल और उसकी आंखें कुछ और ही कहानी बयान कर रही थीं। उन्हें देखकर साफ समझ आ रहा था कि ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है सिद्धार्थ खुराना के अंदर चल रहे पश्चाताप की। फिलहाल अगली सुबह सिद्धार्थ सीधे ओबेरॉय मेंशन पहुंचा और जाकर आकांक्षा से मुलाकात की। 2-3 दिन बाद वो उससे मिला था। आकांक्षा उसे देखते ही पागलों की तरह जाकर उससे लिपट गई और रोते हुए बोली थी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो सिद्धार्थ, हमारी शादी थी और हमारी शादी टूट गई। देखा तुमने, वो लड़की एक बार फिर मेरी खुशियों के बीच आ गई। हर बार ठीक उसी वक्त जब मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला होता है वो आ जाती है। क्या उसका आना जरूरी था? वो सिसकते हुए आगे बोली थी, ये सब उसकी चाल थी। वो हमें कभी भी साथ खुश नहीं रहने देगी। उसने तुम्हें मुझसे छीनने के लिए जानबूझकर तुम्हें अपनी ओर अट्रैक्ट किया, सिर्फ इसलिए कि मेरी जिंदगी में खुशियां ना आए। वो सिर्फ इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि बचपन में मेरी माँ ने उसे घर से निकाल दिया था। वो उसी बात का बदला लेना चाहती है और आज तक वही बदला ले रही है। आकांक्षा की आवाज और भी कड़वी हो गई थी। उसे फर्स्ट मीटिंग में मैंने साफ साफ कहा था कि मैं सिद्धार्थ खुराना को पसंद करती हूँ, फिर भी वो जानबूझकर तुम्हारे साथ आई, तुम्हारे करीब रही। ये सब उसने सिर्फ तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए किया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तो पहली ही मीटिंग में उसे साफ बता दिया था कि मेरी मोहब्बत तुम हो, और मुझसे बदला लेने के लिए, मेरी खुशियों से बदला लेने के लिए उसने ये सब कुछ किया। ये कहते कहते आकांक्षा पूरी तरह से रोने लगी थी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसके सिर पर 2 बार हल्के से थपथपाकर उसे अपने सीने से लगा लिया और शांत स्वर में बोला था, शांत हो जाओ, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, और मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें किसी के बारे में भी इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर उस वक्त तुम्हारी तबीयत खराब नहीं हुई होती और तुम्हें हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ता, तो अब तक हमारी शादी हो चुकी होती। मुझे उस लड़की के आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी जो हो गया सो हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, नेक्स्ट वीक जो ऑक्शन होने वाला है, उसमें तुम मेरी फियांसे के रूप में मेरे साथ चलोगी। आई होप तुम्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। और शादी तो हम फिर कभी भी कर ही लेंगे। जैसे ही सिद्धार्थ ने डार्क और ठंडी आवाज में ये कहा, आकांक्षा का दिल जैसे खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत सिद्धार्थ को कसकर गले से लगा लिया और बोली थी, अगर तुम आज ये सारी बातें नहीं कहते ना, तो ना जाने मैं कब की जीने की उम्मीद छोड़ चुकी होती। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, मेरी जिंदगी में आने के लिए और मुझे संभाल लेने के लिए। तुम नहीं जानते, हर मिनट मुझे लगता था कि तुम मेरा फोन नहीं उठाओगे, मुझसे बात नहीं करोगे। मेरा एक एक दिन एक साल के बराबर गुजर रहा था। उसी वक्त थोड़ी दूरी पर खड़े नैना, ईशान और वैभव ये सारा दृश्य देख चुके थे और उनकी बातें भी सुन चुके थे। कहीं ना कहीं उन्हें भी सुकून मिला था कि उनकी बेटी को उसकी मोहब्बत वापस मिल गई है और उन्हें ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा, वरना आकांक्षा तो उस ऑक्शन में सबके सामने तमाशा खड़ा करने के लिए भी तैयार थी। फिलहाल थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ वहां से जाने लगा। आकांक्षा के माता पिता ने उसे डिनर के लिए रोकना चाहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और कहा कि उसे कुछ जरूरी काम है, वो किसी और दिन डिनर के लिए आ जाएगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। सिद्धार्थ के जाते ही आकांक्षा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी माँ की ओर मुड़ी और बोली, मॉम देखा आपने, सिद्धार्थ खुद आया था और वो पूरी तरह से तैयार है मेरी जिंदगी में वापस आने के लिए। अगर मैं उसके साथ उस नेशनल ऑक्शन में चली जाती हूँ, तो आप जानती है ना, पूरे देश विदेश में हर कोई मुझे सिद्धार्थ की बीवी के रूप में जानेगा, चाहे हमारी शादी हुई हो या नहीं।
उसकी माँ नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तो यही चाहते हैं कि हमारी बेटी को सारी खुशियाँ मिले, और हमें पूरा यकीन है कि तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ जरूर मिलेंगी। रही बात उस झलक की, हमने अपने आदमियों को उसे ढूंढने के लिए लगा रखा है। जैसे ही हमें उसके बारे में पक्की खबर मिलेगी, हम उसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अगर वो सच में जिंदा है और बचकर वापस आई है और उसने एटीट्यूड दिखाने की कोशिश की है, तो उसका अंजाम भी तय है। नैना की आवाज अचानक सख्त हो गई थी। अगर उसे हमारे किसी ऑपोजिशन ने नहीं भेजा होता, तो अब तक वो सामने आ चुकी होती। इसका मतलब साफ है, जिसने उसे भेजा उसी ने उसे गायब भी करवा दिया, ताकि हम उस तक पहुंच न सके। लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि उसका मकसद सिर्फ तुम्हारी शादी तुड़वाना था। तुम फिक्र मत करो, अगर वो लड़की दोबारा हमारे सामने आने की कोशिश करेगी, तो मैं खुद अपने हाथों से उसका अंत कर दूंगी। ये कहते हुए वो गुस्से में वहां से चली गई और जाते जाते आकांक्षा को अच्छी डाइट लेने की सलाह भी दे गई। वहीं दूसरी तरफ ईशान और वैभव एक दूसरे की ओर देखने लगे। ईशान ने धीमे स्वर में पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या इसके पीछे सिद्धार्थ खुराना की कोई चाल है या फिर कुछ और चल रहा है उसके दिमाग में? वैभव ने बेपरवाही से जम्हाई लेते हुए कहा, पता नहीं आप लोग क्या सोच रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आता कि ऐसा क्या है उस सिद्धार्थ खुराना में जिसके पीछे दीदी पागल हो रही है। मेरा एक दोस्त था अभय राणा, वो आकांक्षा दीदी को पसंद भी करता था और उससे शादी करना चाहता था। दोनों की अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी, फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ कि दोनों ने बात करना बंद कर दिया। वो तो मुझे हर तरह से परफेक्ट लगा था दीदी के लिए, अच्छा खासा बड़ा बिजनेसमैन है, समझ में नहीं आता कि दीदी को सिद्धार्थ खुराना में ऐसा क्या दिखता है। ईशान ने तुरंत उसे शांत रहने को कहा, आगे से अभय का जिक्र किसी के सामने मत करना, और वैसे भी आकांक्षा का पास्ट कुछ भी रहा हो, उसका फ्यूचर सिर्फ सिद्धार्थ खुराना है। इतना कहकर वो भी वहां से चला गया और कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई।